तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक और उसके बाद आज के विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये भगवद गीता का 18वां अध्याय है जिसमें इन जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं सुख के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपसम पमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, किंतु यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करें। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, यह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निंद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदाहतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा से ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएँ भ्रम हैं, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। तो आज का हमारा विषय है यौन सुख में निहित दुख। तो विशेषकर आधुनिकता के माहौल में जिसमें हम सभी जी रहे हैं, यौन सुख को यानी सेक्सुअल प्लेजर को बहुत अधिक प्रेरित किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है और विशेषकर युवावस्था में जिसमें आप सभी लोग गुजर रहे हैं, तो जब प्यूबर्टी आती है, जवानी की अवस्था प्रारंभ होती है, तो स्वतः भौतिक नियमों के द्वारा अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, जो वास्तव में अस्वाभाविक है आत्मा की दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में जो हमारी स्थिति है उसमें वो स्वाभाविक लगता है। तो जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जब एक युवक युवती मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को स्पर्श करना और अंततः संभोग करना, तो इसमें बहुत आनंद आता है। तो ये केवल एक युवक और युवती के ही विषय में बात सही नहीं है, कोई भी स्पीसीज, कोई भी योनि में हम ले सकते हैं, वो सब में ऐसा ही है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो कॉकरोच है। हम सोचते हैं ये बहुत कुछ दिव्य चीज है, लेकिन सभी जानवर सभी के अंदर ही ऐसे ही है। तो उस समय में, यानी इस समय में, आप सब अधिकतर लोग इस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जो यौन सुख है ये जीवन में सुख सुखी रहने का एक रियल सोर्स है, वास्तविक है ये सुख। और ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे कि जीवन का मानो यही मतलब है, दिस इज वेरी मीनिंग ऑफ लाइफ। तो आजकल के समाज में लव, प्रेम के नाम को का नाम दिया जाता है इसको, लव इज लाइफ, जीवन क्या है, प्रेम है। तो ये जो भी नाम प्रेम के नाम पर चल रहा है वो वैसे काम है, प्रेम नहीं है, प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन जो लोग जानते नहीं है कि प्रेम क्या है तो काम को प्रेम समझते हैं। तो काम ही जीवन है, यानी प्रेम ही जीवन है, ऐसा माना जाता है कि जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है, यही जीवन का केंद्र है। तो विशेष रूप से आज की सभ्यता में ये जो सेक्स लाइफ है इसको जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता माना जाता है, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंतर्गत एक माना जाता है। एक्चुअली तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये मनुष्य की आवश्यकता है, बद्ध अवस्था में जब जीव है तब उसकी ये एक आवश्यकता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, चार आवश्यकताएं बताई गई हैं, खाना खाना, सोना, मैथुन सुख प्राप्त करना और अपना बच बचाव करना। तो हाँ, इस दृष्टि से ये आवश्यकता है, लेकिन ये एक बद्ध अवस्था की आवश्यकता है। बद्ध अवस्था शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, बद्ध मीन्स इंग्लिश में कहें तो कंडीशनड, प्रोग्रामड, जो अस्वाभाविक स्थिति है जिसमें हम वर्तमान में बंधे हैं उसे कहते हैं बद्ध। बद्ध मतलब बंधा हुआ। लेकिन हम लोग इतने समय से बंधे हुए हैं, हमारी याददाश्त से पहले से बंधे हुए हैं, इसलिए बद्ध जीवन को ही स्वाभाविक जीवन मानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बचपन से ही बीमार है, जन्म से ही बीमार है, जन्म से ही लिटा रहता है, जन्म से ही जो भी उसको आहार मिलता है वो सब दवाई की तरह से ही ऐसे होता है, तो उसको कोई बोले कि जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तब फिर तुम सोओगे, फिर तुम खाओगे, तो वो समझ नहीं पाता है क्या स्वस्थ होने के बाद भी यही खाना, यही चलना, यही सोना रहेगा, क्योंकि वो इतना एडिक्टेड हो गया, इतना हैबिचुअल हो गया, उसने कुछ देखा ही नहीं और किसी और चीज़ की उसको जानकारी नहीं है। तो हम लोग अपनी इस स्थिति में न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर से इसी स्थिति में हैं, अलग अलग योनियों में, हर योनि में एक शरीर धारण करते हैं और हर योनि में किसी एक स्त्री से आकर्षित होते हैं, एक नहीं अनेक स्त्रियों से आकर्षित होते हैं, मनुष्य जीवन में स्त्री और दूसरे जीवन में जो भी फीमेल काउंटर पार्ट, तो ये सब इतना स्वाभाविक लगता है, इसलिए शास्त्रों में इसको बताया गया है कि हाँ ये बद्ध अवस्था की स्वाभाविकता लगती है, वास्तव में स्वाभाविक नहीं है आत्मा के लिए, लेकिन बद्ध अवस्था की आवश्यकता लगती है। लेकिन आजकल की सभ्यता के अंतर्गत इस आवश्यकता को अतिशय बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है कि जीवन का केंद्र यही है मानो, ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देयर इज नो लाइफ विदाउट सेक्स। और जितना अधिक हम मैथुन सुख को, यौन सुख को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक हम सुखी हो पाएंगे, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। इस समझ के साथ कि मैथुन सुख वास्तविक है और इसलिए इसको जितना बढ़ाया जाए उतना ही व्यक्ति सुखी रहेगा। अंततः हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, और यदि ये मान लिया जाए जैसा कि आजकल हो रहा है कि मैथुन सुख वास्तविक सुख है व्यक्ति के लिए, तो स्वाभाविक कंक्लूजन निकलता है जितना हम इस मैथुन सुख को बढ़ाएं उतना ही व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही बच्चे जवान होते हैं, तो आज के स्वच्छंद माहौल में फ्रीली मिक्स होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, इसी आशा से कि जितना ज्यादा हम फ्रीली मिक्स होंगे उतना ही यौन सुख प्राप्त करेंगे और उतना ही हमारा आनंद वर्धन होगा, और लगता भी है कि इट इज रियल। और अनेक अनेक प्रकार के इसमें प्रकार हैं यौन सुख में, परवर्टेड फॉर्म्स जो आज खूब बढ़ रहे हैं, केवल स्त्री पुरुष संबंधी नहीं है, पुरुष पुरुष संबंध भी है, होमोसेक्स, फिर पोर्नोग्राफी जो बहुत ज़्यादा आज बढ़ गई है इंटरनेट की वजह से। तो यही प्रयास है कि खूब जितना हो सके एंजॉय किया जाए, लेकिन जैसा कि सर्वे बताते हैं अधिकतर लोग मैथुन के समय बोर होते हैं। ये जो पूरी क्रिया है मैथुन की क्षणिक है, कुछ सेकंड्स, और जितना मन में विचार किया जाता है कि इससे इतना सुख मिलेगा, कभी उतना सुख नहीं मिलता है जितना एडवर्टाइज किया जाता है। जब वास्तव में व्यक्ति मैथुन सुख के लिए प्रयास करता है तब अनुभव करता है कि जितना सोचा था उतना सुख नहीं मिला, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो वो सोचता है ये सब लोग कह रहे हैं कि इसमें तो बहुत सुख है, लेकिन मेरे को क्यों इतना सुख नहीं मिल रहा है, तो लगता है मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ढंग से समझा नहीं कि कैसे इसको ज़्यादा सुख लेना है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं समझा नहीं, मेरी अप्रोच गलत है। तो फिर क्या करता है, तो फिर बुक स्टॉल में जा करके कुछ किताबें रेफर करता है, हाउ टू इम्प्रूव सेक्स लाइफ, बहुत प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स गाइड टू सेक्स लाइफ। तो प्रयास करता है कि कैसे ये मुझे सुख मिल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, तो पढ़ करके डॉक्टर से सलाह लेकर के कैसे इसको बढ़ाया जाए। लेकिन विडंबना ये है कि जितना अधिक यौन सुख में हम लिप्त होते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट अपने को अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक खाली एम्प्टी फील करते हैं। और इसी की वजह से ये परवर्टेड फॉर्म्स निकल जाती हैं, पोर्नोग्राफी, ये सब फ्रस्ट्रेशन के नतीजे हैं। और वर्तमान में यूथ को इस विषय के ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। सब लोग तो इसको एक ही तरफ चल रहे, प्रोपेगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होता नहीं। तो इसलिए कंफ्यूजन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अनेक अनेक समस्याएं इससे उभर कर आती हैं। तो हम देखें तो क्या सिनेरियो है, क्या होता है कि एक तरफ तो व्यक्ति उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा है, उतना अधिक फ्रस्ट्रेट हो रहा है। फिर ये जो पूरा सेक्स का पैराफर्नेलिया है, यानी उससे संबंधित सब चीजें, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे तो कॉलेज में एंटर होते ही बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ में सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। और जो सीनियर्स होते हैं, जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं, सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एंकरेज करते हैं, क्यों भाई कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई कि नहीं बनाई, और नहीं बनाई क्या यार, तो आदमी ही क्या है। तो आजकल के इस माहौल में यदि कोई व्यक्ति काम वासना में अत्यधिक लिप्त नहीं है तो पागल समझा जाता है, तो समथिंग नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल है तेरे में, कुछ कुछ गड़बड़ है, तो जवानी में भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम है तेरे में, डॉक्टर के पास चेक करा कुछ प्रॉब्लम। तो आइए आजकल का माहौल है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें स्वाभाविक रूप से इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सेसिवली इंटरेस्टेड नहीं है, तो समझा आता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो पूरा माहौल इस प्रकार से गियर्ड है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, सिनेमा, हमारे फ्रेंड्स, सब माहौल पूरी तरीके से इसी तरफ किसी को प्रेरित करता है। तो अगर कोई व्यक्ति कॉलेज लाइफ में एंटर करते समय ऐसा इच्छुक भी ना हो, तो पूरे माहौल को देखकर उसे पढ़ करके उसे लगता है कि यही यही राइट पाथ है, यही जीवन है, इसके बिना कुछ गड़बड़ है, दिस इज राइट, सब लोग कह रहे हैं तो सही होगा ना, ये मेरे में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिर अगर उसको स्वतः प्रेरणा नहीं होती तो भी सब जगह से फोर्स कर करके कैसे ना कैसे ही ट्राइज टू बी इंटरेस्टेड इन दिस, तो फिर लव अफेयर में पड़ जाते हैं। और ये पूरा जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो ये पूरी कहानी है, ये पूरा रास्ता है, ये ट्रेजिक है। ज्यादातर फिल्म स्टोरीज कैसी होती हैं, ट्रेजिक, रोमांटिक स्टोरीज ट्रेजिक, ट्रेजिक एंड। तो एंड ही ट्रेजिक नहीं है, तो क्या होता है, अनेक अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। जब आप किसी को प्रेम करना शुरू करते हैं, प्रेम मीन्स सो कॉल्ड प्रेम, तो तुरंत रिजेक्शन होने के कारण डिप्रेस होने के लिए अपने को लायबल बना देते हैं, संवेदनशील बना देते हैं। मैंने उसको प्रेम किया पर वो तो मेरे किसी और के साथ है, अभी मेरा क्या होगा, मैंने इतना सोचा इतना किया लेकिन वो मेरे को रिजेक्ट कर दिया उसने। कोई भी तरफ हो सकता है, फॉर लेडीज जेंट्स और फॉर जेंट्स लेडीज होता है। तो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट से एगोनी, बहुत पीड़न होता है हृदय में, क्योंकि आप किसी को प्रेम करना चाह रहे हैं और आपको रिजेक्ट कर दे तो आपको लगता है कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं। तो रिजेक्शन से बहुत हृदय को पीड़न होता है, पेन होता है। रिजेक्शन हो गया या तो जैसे लड़के वो सुंदरता देखते हैं, तो जो लड़कियां होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं, तो वो क्या देखती हैं, वो पैसा देखती हैं, बॉयफ्रेंड के पास पैसा है कि नहीं पहले ये देखती हैं। तो आपस में राइवलरी हो जाती है। आपने देखा है कभी कुत्तों के समूह को, एक बिच कुतिया के पीछे ऐसे सब लड़ते हैं, गुस्से से झगड़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ऐसे ही मनुष्य भी होता है कॉलेज के अंदर, करेक्ट, खून भी कर देते हैं एक दूसरे का, और कई बार तो लवर भी खून कर देता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो अपने को ही मार देता है, अगर जो उसने सोचा वैसा नहीं हुआ, अपने को ही मार देता है, अपनी प्रेमिका को ही मार देता है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। कितने लोगों का जीवन इस प्रकार से बर्बाद होते देखा गया है। अभी तो विवाह हुआ ही नहीं है, उससे पहले की बात चल रही है। और दूसरा सिनेरियो देखें तो आजकल ये सेक्स को इतना ज्यादा प्रोपगेट किया जा रहा है, कितने लोगों के शरीर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, जबरदस्ती बलात्कार, पूरा जीवन उनके दिमाग के ऊपर एक बहुत भारी एक दुखद छाप हमेशा पूरे जीवन भर रह जाती है। तो इस प्रकार से ये सब कॉम्प्लिकेशंस में से हम लोग गुजरते हैं, लेकिन ये सब के बावजूद भी हमें एक आशा है कि नहीं नहीं सेक्स विल मेक मी हैप्पी। और फिर विवाह के बाद भी, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन है, इसी की वजह से, ये फ्री मिक्सिंग की वजह से तलाक भी बहुत कॉमन है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप किसी को प्रेम किए, माँ बाप से झगड़ा किए, शादी किए झगड़ा करके, और पता लगा फिर थोड़े दिन बाद में तलाक। ये सब भागवतम में लिखा है 12वें स्कंध में कि स्त्रियां कलयुग में बड़ी आसानी से तलाक दे देंगे अपने पति को, दो कारणों से। आप पढ़ सकते हैं भागवत में, सब बताया और ऐसा हो रहा है, देख लीजिए। वो दो कारण हैं, या तो पति के अंदर सेक्स पावर नहीं है, या पैसा नहीं है। अगर पैसा खत्म हो गया, पति गरीब हो गया तो तलाक ले लेंगी, या तो इंपोर्टेंट है तो तलाक हो जाएगा, बहुत जल्दी तलाक हो जाएगा, और फिर उसका जीवन ब्रोकन, टूटा हुआ जीवन बचा हुआ, खींच रहा है गाड़ी बचे हुए लाइफ। फिर शारीरिक दृष्टि से जो यौन है, जो मैथुन है, वो शरीर को बहुत क्षति पहुंचाता है। सबसे पहला तो STD, जानते हैं STD के फुल फॉर्म, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें एक बहुत कॉमन है आजकल क्या, एड्स बहुत है। तो आप सेक्स की वजह से, वो सब फ्री मिक्सिंग की वजह से यदि किसी STD में पड़ गए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो गया जीवन आपका। बहुत टेरिबल डिजीज है सब, सेक्सुअल गोनोरिया, सो मेनी डिजीजेस, बहुत टेरिबल डिजीज, बहुत दुखदाई है। तो हमेशा उसका डर बना रहता है, तो इसके लिए आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बचने के साधन, लेकिन रिस्क तो है ही। और हम देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है एड्स की, पेशेंट्स की। और न केवल ये, जो वीर्य है, तो एनालाइज किया गया है कि एक वीर्य की एक बूंद खून की 60 बूंदों से बनती है। 60 बूंदें खून की मिला करके एक बूंद वीर्य बनाती है। तो ये एक जीवन का महत्वपूर्ण जीवनी शक्ति वाला तरल है वीर्य। तो आजकल के तथाकथित सभ्यता में वीर्य को अधिक से अधिक स्खलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अलग अलग रूप से, मास्टरबेशन और सो मेनी वेज। तो परिणाम क्या होता है कि ये वीर्य के साथ जो जीवनी शक्ति है वो भी क्षीण होती जाती है, वो भी निकलती जाती है शरीर से। तो प्रारंभ में जवानी में आपको पता नहीं लगता है वॉट इज रॉन्ग विथ सेक्स, आई एम एंजॉइंग, मोर सेक्स आई एम हैविंग, मोर आई एम एंजॉइंग, यू मे थिंक लाइक दैट। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसके परिणाम, दुष्परिणाम आपके सामने आने शुरू होंगे। जैसे यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये गुण है रजोगुण का, रजोगुण के सुख का ये एक गुण है, क्या? प्रारंभ में अमृत और अंत में विष लगता है। तो प्रारंभ में या यंग लाइफ में एंजॉय, लेकिन यही जो शरीर जिससे आप ये मैथुन सुख अनुभव कर रहे हैं, वही शरीर आपके दुखों का कारण भी है, बीमारी भी इसी शरीर में आने वाली है, चिंता मत करो। तो जो जवानी में जितना एंजॉय करता है बुढ़ापे में उतना ही रोता है, ये डिक्टम है। जो जितना अधिक वीर्य स्खलन करेगा जवानी में, बुढ़ापा पहले तो उतना ही जल्दी आएगा, प्री मैच्योर ओल्ड एज, समय से पहले बुढ़ापा। आज कल हम देखते हैं बहुत जल्दी लोग बूढ़े आते हैं, शक्तिशील आते हैं, 50 साल की उम्र में, 50 साल में तो बिल्कुल बेकार रहते हैं। और वो बुढ़ापा जिसने अपना वीर्य स्खलन किया है जवानी में अधिक, उसका बुढ़ापा भी अधिक दुखदायी होता है, अधिक बीमारियां उसको ग्रसित करती हैं, क्योंकि रोगों से प्रतिरोध करने की जो उसकी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो जैसे जैसे ये बुढ़ापा आता है और रोगों से प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, तो अनेक अनेक प्रकार के रोग हमको पकड़ लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु भी अधिक होती है, अकाल मृत्यु के चांसेस भी अधिक हैं ऐसे लोगों के। उसके विपरीत जो लोग अपने वीर्य को स्खलन नहीं करते हैं, तो जब ये वीर्य शरीर में धारण किया जाता है, तब ये वीर्य ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर चलता है, चढ़ता है, और मस्तिष्क में पहुंच करके मस्तिष्क को पोषित करता है, पोषण देता है। इसलिए जिनका वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है उन्हें ऊर्ध्वरेतस कहा जाता है शास्त्र में, ऊर्ध्वरेतस, जिनका वीर्य ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, और उनके चेहरे पर आप एक तेज देख सकते हैं, ओजस जिसको बोलते हैं, ब्राइटनेस। और जो अपने वीर्य को स्खलित करने के लिए हैबिचुएटेड हैं, उनके चेहरे पर आप एक डलनेस देख सकते हैं, मुरझायापन देख सकते हैं। उसी प्रकार जो लोग अपने वीर्य को स्खलित नहीं होने देते हैं, अच्छी स्मरण शक्ति, विल पावर, डिटर्मिनेशन, अच्छी हेल्थ, साफ दिमाग, साफ बुद्धि, विशेष रूप से आध्यात्मिक विषयों को समझने की क्षमता, ये सब उसके गिफ्ट हैं। इसके विपरीत जो लोग वीर्य को स्खलित करते हैं, तो वो आध्यात्मिक विषय तो समझने की रुचि भी खत्म हो जाती है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, समझने की बुद्धि, उसको समझाया भी जाए तो भी समझ नहीं सकता, डल ब्रेन, डल ब्रेन। हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। आजकल की सभ्यता में लोगों को, स्टूडेंट्स को, किसी भी को ये बताना, ये समझाना, आध्यात्मिक विषय समझाना बड़ा मुश्किल है, उसकी समझ में नहीं आता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो बिल्कुल ABCD है आध्यात्मिक जीवन का, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मीन, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सो हाउ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो अक्षम हो जाता है आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए, और रुचि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो यौन है ये हमें पशुवत बनाता है, पशु के जीवन की तरफ ले जाता है, हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार सब पशु जैसा जाता है। पशु क्या करते हैं? फ्री सेक्स करते हैं। तो जब हम उनके समान फ्री सेक्स करने जाते हैं, तो हम भी पशु जैसे बन जाते हैं। तो क्या हम पशुओं से अपेक्षा करते हैं कि वो आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखेंगे? आध्यात्मिक विषय छोड़िए, सामान्य नैतिकता में भी वो नहीं रह सकते हैं। जब दो कुत्ते आमने सामने आएंगे तो वो भौं भौं ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप नहीं अपेक्षा कर सकते कि कुत्ते आपस में मिलकर के मैत्री कर रहे हैं, संभाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुत्ते मीन्स कुत्ते, झगड़ेंगे ही। आप जरा एनालाइज कीजिए आजकल का समाज, एक दूसरे को देखते भौमो करते कि नहीं करते, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं मेरा है, मेरा है। बस में जाइए तो सीट के ऊपर लेकर के भौमो शुरू, रुमाल डाल दिया, मैंने डाला, मैंने डाला। एक प्रांत वाले दूसरे प्रांत, एक भाषी दूसरे भाषी, एक देश दूसरे देश, पड़ोसी अड़ोसी एक दूसरे से सब झगड़ रहे हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है? क्यों झगड़ा क्यों है? अत्यधिक स्वार्थ की वजह से, करेक्ट। और ये सेक्स स्वार्थ की भावना को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सेक्स आधारित है इस समझ पे कि मैं ये शरीर हूं, शारीरिक का जो सुख है, ये जो मैथुन सुख, जो शारीरिक सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है, और मैं शरीर हूं इसलिए वही मेरा सुख है। तो ये जो मैथुन है, ये शारीरिक भावना को, देह भावना को और गहरा करता है कि मैं शरीर हूं, इस भावना को और गहरा करता है, इस चेतना को, ये जो गलत है इसको और सॉलिडिफाई करता है, इस विचार को कि यस आई एम दिस बॉडी, बॉडी हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस, जो एक भ्रांत धारणा है। और जानवर तो इसी भावना में है, देहात्म भावना में ही है। एक कुत्ता तो यही सोचेगा कि मैं कुत्ता हूं, वो नहीं सोच सकता कि मैं कुत्ता नहीं हूं। जहां पर सामने फीमेल डॉग आई, सेक्स होना ही चाहिए, दैट्स ऑल ही कैन थिंक, नथिंग एल्स। एक सिविलाइज्ड आदमी सोच सकता है ये मेरी मां है, लेकिन एक जानवर के लिए मां और बहन और ये सब विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कुत्ता है, वो जानवर है। तो अधिक से अधिक मैथुन सुख करने से हम पशुवत होते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये विचार भी खत्म हो जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। सबको केवल इंद्रिय तृप्ति का एक साधन के रूप में देखा जाने लगता है, करेक्ट। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्रीडम, फ्री है, सब फ्री है, जितना हो जो भी है सब ठीक। यानी कि हम क्या बन रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स बन रहे हैं, दैट्स ऑल। टाई लगा करके चलते हैं, अंदर तो वही कुत्ते जैसी भावना है। यू कैन एनालाइज ईटिंग, कुत्ते को जो ही मिल गया खाने का, आदमी को भी जो ही मिल गया खा लो, सड़ा हुआ मांस है, कोई भी है, फाइव स्टार होटल में जाए खाओ, कहीं खाओ, मांस तो मांस ही रहेगा। तो ये जो मैथुन सुख है, मैथुन में संलग्न होना है, वो हमें पशुवत बनाता है, और आप देखेंगे उससे हमारी सभी अच्छी आदतें, अच्छे गुण समाप्त हो जाते हैं। दैवी गुण, आत्मसंयमता, कृपा, ये सब खत्म हो जाते हैं। स्वार्थ, हिंसा, अभद्र व्यवहार सब पनपते हैं। और मैथुन सुख में जो अधिक लिप्त होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेडली, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी दुष्कृत्यों में भी लिप्त होना शुरू हो जाते हैं। ये सब भाई भाई हैं, सगे संबंधी हैं सब। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग यानी जुआ, इलिसिट सेक्स मतलब अवैध स्त्री संग, शराब, नशा, तंबाकू इत्यादि, बीड़ी, सिगरेट, और मीट ईटिंग, मांसाहार, अंडे का भक्षण भी इसमें आता है। तो ये सब जो सेक्स में इन्वॉल्व होता है, धीरे धीरे मांस मछली भी खाना शुरू करता है, सब कुछ करना शुरू करता है। गैम्बलिंग भी, पैसा चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए पैसा चाहिए, तो गैम्बलिंग शुरू आता है, शेयर मार्केट, इजी मनी, तो ये सब जुड़े हैं, और सब प्रकार के कुकृत्य शुरू हो जाता है आदमी, और इस प्रकार से आदमी इन कुकृत्यों में फंसता जाता है, फंसता जाता है। आज जानते हैं दलदल, हिंदी में बोलते हैं दलदल, क्या बोलते हैं गुजराती में उसको? एक्चुअली कीचड़ और दलदल में थोड़ा अंतर है हिंदी में। तो दलदल एक ऐसी कीचड़ है जिसमें आदमी एक बार गिर गया, वो गिरता ही जाता है नीचे, जितना अधिक प्रयास करता है निकलने का उतना ही उसमें नीचे गिरता जाता है, उसे कहते हैं दलदल। तो ये ऐसा है, आप जितना उसमें जाते हैं और फिर उससे निकलने का प्रयास करेंगे नहीं निकल पाएंगे और गिरते जाएंगे। तो ये ऐसी दलदल है। और शास्त्रों में काम को नरक के तीन द्वारों में से प्रथम द्वार बताया गया है। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के तीन द्वार बताए गए हैं। जो शास्त्रों को जानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, कौन जाता है, चाहता है नरक में जाना, लेकिन ये नरक के द्वार हैं। यदि आप मैथुन सुख के पीछे भागेंगे तो नरक में गिरेंगे। और नरकों का वर्णन शास्त्रों में है, वह आप पढ़ सकते हैं। वो सब भ्रांतियां नहीं है, वो सब पागलपन नहीं है, वो सब विचार नहीं है केवल, वो सब सच्चाई है। आप बोलेंगे अरे कौन, किसने देखा है, आप देखेंगे, चिंता मत करो, समय आने पर। हमने नहीं देखा लेकिन आप देखेंगे, जस्ट वेट फॉर द टाइम, राइट टाइम। हम कर्म के चक्र में फंसते जाते हैं, और गहरा, जितना अधिक यौन सुख के पीछे भागते हैं। कर्म बंधन की जो साइकिल है, कर्म बंधन की साइकिल मतलब ये जो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसमें और अधिक गहरा फंसते जाते हैं, और अधिक गहरा फंसते जाते हैं। क्योंकि अधिक से अधिक ये भाव आ जाता है मैं शरीर हूं, और शरीर ये सोचते ही फिर मैं अलग अलग प्रकार का शारीरिक सुख प्राप्त करने का अनुभव करता हूं, तो अलग अलग प्रकार की योनियां मुझको मिलती जाती हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनियों, अगर आप इंद्रिय सुख करना चाहते हैं, काम मैथुन सुख करना चाहते हैं, अलग अलग वैरायटी का है ना, आदमी स्त्री, पुरुष स्त्री से मिलने वाला सुख, तो फिर पुरुष पुरुष से मिलने वाला सुख, तो फिर और भी उसके परवर्टेड टाइप हैं, पुरुष और जानवर से मिलने वाला सुख, बहुत सारी वैरायटी है। तो फिर प्रकृति के द्वारा व्यवस्था है, चिंता मत करो, बहुत वैरायटी मेरे पास उपलब्ध है, जितना चाहिए उतना वैरायटी है। कॉकरोच की तरह सुख, कुत्ते की तरह सुख, बिल्ली की तरह सुख, अमीबा की तरह सुख, सब की तरह से आप मैथुन सुख अनुभव कर सकते हैं अलग अलग योनियों में जाकर के। तो आप कितना भी अनुभव कर लीजिए, कितनी भी योनियों में चले जाइए, अंततः आप असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि ये भ्रम है। यौन सुख सुख नहीं है, ये भ्रम है। तो भ्रम ही रहेगा, चाहे वो मनुष्य के रूप में किया जाए, चाहे वो जानवर के रूप में किया जाए। इसलिए कोई भी मैथुन सुख से सुखी नहीं हो सकता। आप इसको आज अनुभव करें, कि कल करें, कि इस जन्म में करें, कि इस जन्म के बाद करें, वो आपके ऊपर है। भगवान तो यहां पर अपना निर्देश दे रहे हैं, और ये कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हैं और समाज में देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की इस भगवत गीता का लाभ उठाएं, जो उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसे समझें। दुर्भाग्यवश कोई ये जानकारी नहीं दे रहा है, सब उल्टा प्रशिक्षण, किसी को पता ही नहीं है। हमारे जो शिक्षकगण हैं तथाकथित, उन्हें पता नहीं। वैदिक संस्कृति के अंदर सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। चार आश्रम है ना जीवन में, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें से तीन आश्रम में तो यौन सुख जीरो, केवल एक आश्रम गृहस्थ आश्रम में अलाउड, लेकिन अंडर रेस्ट्रिक्शंस, वेरी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस। विवाह जो है वो सेक्स लाइसेंस नहीं है, इसलिए उसको विवाह यज्ञ माना गया है। विवाह यज्ञ है, वो सेक्रीफाइस है। वो जो आजकल का विवाह हो रहा है, कोर्ट में जाओ, हस्ताक्षर करो, आई लव यू, यू लव मी, ओके साइन, और डाइवोर्स की कॉपी भी साथ में तभी के तभी साइन कर लेते हैं, क्योंकि कल परसों जरूर पड़ेगा। तो ये केवल एक सेक्स के लिए एग्रीमेंट नहीं है विवाह, शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार विवाह एक यज्ञ है, कि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, उनके लिए एक थोड़ा साइड में जाकर के वापस आने का है, कि ठीक है आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, और फिर जाओ और बाहर आ जाओ, गृहस्थ में आ जाओ, वानप्रस्थ, ऐसा नहीं कि जाओ और फिर अंदर ही रहो, ऐसा नहीं है। जाओ आने के लिए, अंदर घुसो बाहर निकलने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये क्या है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस होता है वो केवल सुनने से समझ लेता है, सेकंड क्लास इंटेलिजेंस को खुद अनुभव करने की जरूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है वो सुन करके, शास्त्रों में सुना है कि सेक्स से कोई सुखी नहीं हुआ है, कोई सुखी नहीं होगा, तो मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है बोलेगा नहीं, सब कोई सुखी नहीं हुआ हिस्ट्री में, लेकिन शायद मैं सुखी हो जाऊं। तो जिसको ऐसा भ्रम है तो उसके लिए है, ठीक है, तो आप जाके देख लो। तो वो अंदर जाता है और फिर लात घुसे खाता है, तब फिर उसकी अकल ठिकाने आती है, सही कहा था, ठीक है तो बाहर आ जाओ, वानप्रस्थ में आ जाओ और फिर संन्यास। यानी कि अल्टीमेटली पूरा जो डायरेक्शन है, एम है मनुष्य जीवन में, वो है कैसे इस यौन सुख को धीरे धीरे, यौन संबंध को धीरे धीरे कम करना है, और कम मतलब इसको जीरो पे ला देना है। लेकिन आजकल की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल उल्टी है, कैसे इसको और बढ़ाना है। नो, ह्यूमन लाइफ इज मीन टू मेक सेक्स जीरो। तो कई बार ये ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि सेक्स लाइफ को जीरो मानना ये अननेचुरल है, या बनाना अननेचुरल, ये हमारी जो शरीर की जो स्वाभाविक क्रिया है उसके विरुद्ध है। थैंक्स टू मिस्टर फ्रॉयड, फ्रॉयड फिलोसफी फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जो ये सब विकृतियां हम संसार में आज देखते हैं, ये सब गड़बड़ देखते हैं, इसका मूल कारण है कि लोगों को फ्री सेक्स नहीं करने दिया जा रहा है। ये कारण है कि समाज में सब समस्याएं हैं, सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उसका कारण है कि लोगों को रेस्ट्रिक्शन है सेक्स में। तो जितना हम फ्री सेक्स अलाउ करेंगे उतना ही लोगों के अंदर ये सब मानसिक तनाव इत्यादि सब नहीं होंगे। तो ये जो फ्रॉयड फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, तो उसके द्वारा आज समाज में उल्टा है, अधिक से अधिक सेक्स को बढ़ाया जाए। तो ये जो सेक्स लाइफ, ये जो प्लेजर है, मैथुन सुख है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये आया कहां से, ये सुख का उद्गम क्या है, ये क्या है, सब चक्कर क्या है, क्योंकि पूरा जगत तो इसके पीछे पागल है। कौन नहीं है जो सेक्स के पीछे पागल नहीं है। 99.9% लोग जानवर सब। तो आखिर फिर इसका उद्गम क्या है, ओरिजिन क्या है। तो ये जो काम सुख है, यौन सुख है, ये वास्तव में हर जीव का भगवान के साथ जो प्रेम संबंध है उससे मिलने वाले सुख का ये एक विकृत रूप है। भगवत प्रेम का विकृत रूप है ये काम सुख। और क्योंकि वो हर जीव के अंदर है भगवत प्रेम, इसलिए उस सब के अंदर वर्तमान में उसकी विकृत अवस्था देखी जाती है काम, इसलिए ये सब जगह वर्तमान है, उपस्थित है, इसलिए यूनिवर्सली प्रेजेंट है। तो ये हर जीव की भगवान के प्रति जो उसकी उसका जो प्रेम है उसका विकृत रूप है, इसलिए यूनिवर्सली प्रेजेंट है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है इस विकृति को खत्म करने के लिए, इसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, काम से प्रेम में आने के लिए। ये विकृति को हम खत्म, इसको वास्तविकता में बदल सकते हैं मनुष्य जीवन, जानवर में नहीं बदल सकते, मनुष्य बदल सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है तपस्या के लिए, यानी इस काम, इस मैथुन सुख को भोगने का प्रयास न करने के बजाय आत्म संयम रखते हुए भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज में, क्रिश्चियन मंक्स में, तो अंदर खाने बहुत इलिसिट सेक्स चलता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था में ऐसा होता है। तो फिर लोग ये तर्क ये करते हैं कि देखा, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अननेचुरल है, इसलिए वो सेक्स को कंट्रोल करना अननेचुरल है, ये नेचुरल चीज है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो वास्तव में वो जो हम जो मंक्स हैं या जो साधु हैं तथाकथित, जो इस प्रकार से विकृतियों में पड़े हैं उसका कारण है कि जो इस काम वासना से निकलने का जो तरीका है उसको सही रूप से अपना नहीं रहे हैं। तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सही रूप से अपनाना पड़ेगा। आसान तो नहीं है ऑब्वियसली, पूरा जगत जिसके पीछे पागल है उससे बच पाना आसान तो नहीं होगा ना, तो आसान तो नहीं है। तो अगर सटीक तरीके से उस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए जन साधारण के लिए ये विवाह यज्ञ सेक्रेट मैरिज लाइफ के द्वारा धीरे धीरे इसको नियमित करने का की अनुमति है शास्त्रों में और सभी प्रकार के क्रिश्चियंस में भी, सभी धर्मों के अंदर मुस्लिम धर्म में भी इसको रेगुलेट किया जाए। वो विवाह एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं तो रेगुलेट किया जाए, धीरे धीरे छोड़ा जाए, लेकिन निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तो इसको छोड़ना ही है। क्योंकि यदि ये सेक्स अट्रैक्शन को नहीं छोड़ेंगे तो इसी जगत में ही रहना पड़ेगा, ये तो श्योर है। बार बार कोई ना कोई शरीर लेना ही पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरना ही पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन में अंतिम लक्ष्य यही है कि इससे कैसे निकल पाए, सभी प्रकार के इन भौतिक आकर्षणों से निकलकर भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हैं। हम ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड को भी चाहेंगे और भगवान को भी चाहेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही जगह किसी भी चीज से आपका आकर्षण रहेगा तो भगवत आकर्षण नहीं होगा, तो एकदम से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैरिज है जिसमें हम धीरे धीरे इसको नियमित करते हैं, नियमन करते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ के अंदर जो स्त्री और पुरुष का संबंध है बिल्कुल अंडर रेस्ट्रिक्शन है, वो सेक्स लाइसेंस नहीं है, वो केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए, अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए ही वो अलाउंस है, न कि मनमाने ढंग से सेक्स करने के लिए। नो, वो भी नहीं, वो भी इलिसिट सेक्स है। पत्नी के साथ भी संतान उत्पत्ति करने के अलावा मनमाने ढंग से सेक्स करना वो भी इलिसिट है, और ये जो हस्त मैथुन इत्यादि करते हैं वो भी इलिसिट सेक्स है, वो भी पाप है, महान पाप है, समझ लीजिए। विवाह संबंध के अंदर संतान उत्पत्ति करने मात्र के लिए जो मैथुन है वही धार्मिक है, और वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, दैट इज रिलीजियस। धर्म विरुद्धो कामो अस्मि, जो धर्म के अनुसार काम है वो मैं हूं। जो अच्छी संतान को, अच्छे व्यक्तियों को इस धरती पर लेके आने के लिए, जिससे वो अपना ट्रेनिंग शुरू कर सके भगवत धाम जाने के लिए, इसके लिए ये मैथुन ये बनाया गया है सिस्टम। तो भी संतान उत्पत्ति करने में और संतान को देखभाल करने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसको सेक्स से जोड़ा गया है कि उसमें एक सुगर कोटिंग है, सेक्स में एक प्लेजर है, नहीं तो कौन संतान उत्पत्ति करेगा, कौन इतना सिरदर्द देगा। तो इसलिए उसके साथ बनाया गया है ऐसा सिस्टम। लेकिन तो अंतिम हेतु उसको नियमित करना है। तो अंततः ये समझना चाहिए कि सेक्स जो है बॉन्डेज का कारण है, चाहे वो लिसिट और इलिसिट, वैध या अवैध, वो बंधन का कारण तो है ही। ऐसा नहीं सोच सकते कि बस गृहस्थ जीवन में रह करके हम बस रहते हुए ही लिबरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अंतिम लक्ष्य उसका भी उसको छोड़ना ही है, वो केवल एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम छोड़ना है। लेकिन अंततः सबको ये समझना चाहिए कि सेक्स इज अननेचुरल, वो नेचुरल नहीं है। भगवत प्रेम ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर इसको कैसे हम इसको, इस जो सेक्स डिजायर है बहुत स्ट्रांग होती है, ये आसान नहीं है। वेग उदर पस्त वेगम, जो इंद्रियों का, जननेन्द्रियों का जो वेग है, पुशिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है, और विशेष रूप से आज के वातावरण में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत उकसाया जा रहा है उसको। हर स्त्री जो भी करती है, जो भी पहनती है, जो भी बात करती, जो भी, वो एक ही लक्ष्य है, हाउ टू अट्रैक्ट मैन। और आदमी जो भी करता है, अधिकतर ज्यादातर मोर सो इन फीमेल, पर आजकल मनुष्य पुरुषों में भी, हाउ टू इंप्रेस अपोजिट सेक्स। तो इसलिए इस समाज में जहां फ्रीडम है तो ये बहुत मुश्किल हो गई है स्थिति, क्योंकि स्त्री और पुरुष की उपमा दी गई है फायर और बटर से। जब अग्नि के समीप आप मक्खन लेके जाते हैं तो क्या होगा, मक्खन का पिघल जाएगा, वो नहीं रह सकता। वो आप सोचें अग्नि के पास रखेंगे और वो जमा रहेगा, हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से जब फ्री मिक्सिंग होगा, फ्रीली स्त्रियों के संबंध संपर्क में पुरुष आएंगे, तो काम वासना प्रेरित होगी ही। आजकल हम लोग बोलते हैं ये सब बलात्कार बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? आप ही तो उसको प्रेरित कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे, फिल्म से, और जो सब पोशाक पहन रहे हैं, ड्रेसेस पहन रहे हैं, जितना नग्न हो सके उतना रहो, तो रेप नहीं होगा तो और क्या होगा? बटर और फायर को पास पास लाया जा रहा था और क्या होगा, यही होगा। व्हाट एल्स यू विल एक्सपेक्ट? बटर फायर को पास पास लाओ लेकिन बटर पिघलेगा नहीं, कैसे नहीं होगा? तो ये सब अनेक अनेक प्रकार की जो विकृतियां और वॉयलेंस, उसके बाद वॉयलेंस, जब काम पूरा नहीं होता है तो वॉयलेंस, हिंसा, क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जब काम पूरा नहीं होता है काम वास्तव, क्रोध, वॉयलेंस, तो ये सब होगा। तो यदि हमें इससे बचना है तो जो ये काम इच्छाएं हैं, सेक्स डिजायर जो बहुत स्ट्रांग है, इनसे इनको काबू करना होगा। तो इनको काबू करना बड़ा कठिन है। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहली कड़ी तो है कि ये समझना कि ये काम, ये जो मैथुन सुख है, ये सुख नहीं है, ये हमें सुखी नहीं बना सकता। इसके विषय में सुनना कि ये हमें सुखी नहीं बना सकता और कैसे ये हमें दुखी बनाएगा, जो आप आज कर रहे हैं, इसको रेगुलरली सुनना चाहिए। तो ये भगवद गीता और विशेष रूप से एक पुस्तक है, ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप वो पुस्तक खरीद सकते हैं, यहाँ पर उपलब्ध है। हिंदी में भी आने वाली है लेकिन अब इंग्लिश में है, तो फिलहाल आप वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो उसमें डिटेल में वर्णन दिया गया है कि ब्रह्मचर्य के क्या फायदे हैं और ये मैथुन सुख से क्या हानियां हैं और कैसे ये भ्रम है। तो ऐसे हमको रेगुलरली सुनना होगा इस भ्रांति से निकलने के लिए, बुद्धि से प्रयोग करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे ये सुख नहीं है। और कंट्रोल भी करना होगा नेगेटिव एस्पेक्ट, अपने को अग्नि के समीप नहीं ले जाना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा अपनी आदतों को। तपस्या, तपस्या मतलब क्या, जो आप चाहते हैं उसको ना करना, उसे तपस्या कहते हैं। तो समझ करके कि ये गलत है, ये क्या है, तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस है इसको स्टॉप करना। तो ये सब बातें आपको बड़ी अरुचिकर लग सकती हैं, लेकिन अगर आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन केवल अपने आप में टिकेगी नहीं, यदि हायर टेस्ट कोई आपको नहीं मिलेगा तो। सुख तो हमको चाहिए, तो मैथुन सुख से मिलने वाले सुख को हम कैसे छोड़ेंगे यदि कोई उससे और बेहतरीन सुख का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए वो सब जो पादरी और वो सब जो आप देखते हैं तथाकथित स्पिरिचुअल मूवमेंट में जो प्रॉब्लम होती है, इसलिए होती है, केवल रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन भगवान के साथ का संबंध का जो वास्तविक सुख है उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कितने दिन टिकेगा रेस्ट्रिक्शन? थोड़े दिन टिकेगा और फिर टूट जाए। और लेकिन वो सन्यासी हैं या पादरी हैं तो विवाह नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फिर क्या होता है, अवैध जो और घृणित है, घृणित है, तो इसलिए वो हम एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। सो वन इज ओके रेगुलेटेड मैरिज लाइफ, दैट इज वन थिंग, रेगुलेशन धीरे 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 धीरे। और केवल यानी कि बस शादी करने से ही काम सब चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट बाय मैरिंग सेक्स प्लेजर, सेक्स डिजायर विल नॉट गो। वो तो केवल उसको नियमित और उसको वो इलिसिट में ना बदले इसके लिए है, कहीं आप इलिसिट सेक्स करके पाप ना करें इसके लिए। लेकिन काम से बचने का वो तरीका नहीं है, काम का वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा विवाह करना। उसके लिए अंततः क्या करना होगा, भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है उसको डेवलप करना होगा भक्ति योग के माध्यम से। भगवान की भक्ति सेवा में जो सुख है उसको अनुभव करना होगा। जब आप उस वास्तविक सुख को अनुभव करेंगे थोड़ा भी, तो ये जो उसके समक्ष ये सब जो भौतिक सुख है, जो काम सुख है, ये भी आपको नगण्य लगेगा। तब फिर धीरे धीरे आप इसको छोड़ पाएंगे। तो ये जो भक्ति योग है, इसलिए इसके अंदर अगर आप विवाहित नहीं हैं और यदि आप ये समझ करके आजीवन अविवाहित रहकर पूरी तरीके से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाकर ये समझ करके मेरा जीवन तो भगवान के साथ संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए ही है, बहुत जन्मों में मैंने विवाह किए हैं, इस जन्म में विवाह ना करके केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ये जीवन है, यदि ऐसा सुदृढ़ निश्चय कोई कर पाता है बेस्ट। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो फिर कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत वैवाहिक जीवन, विवाह, लेकिन किस लिए? भक्ति के लिए। ये उपाय है। भक्ति का प्रारंभ होता है श्रवणम से, जो हम लास्ट टाइम बताया था, श्रवणादि शुद्ध चित्त करहु उदय। तो भगवत गीता के ज्ञान को सुनना यानी या पढ़ना, भागवतम इत्यादि आगे आगे धीरे धीरे उसको सुनना, ये पहली कड़ी है। और हरे कृष्ण कीर्तन करना, ये जो भगवान का दिव्य नाम है, ईहा होइते सर्व सिद्धि सवार, इससे सब सिद्धि आपको मिलेगी। ये बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वो आप ट्राई करके देखिए। रेगुलरली ये हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। आप में से कितने लोग रेगुलरली एक माला या एक से अधिक माला करते हैं जप? बहुत अच्छा है जो लोग करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया आप शास्त्रों के अंतर्गत कलयुग के लिए जो ये विशेष साधन बताया गया है, भगवान नाम जप कीर्तन, आप में से कितने लोग रेगुलरली आरती में आते हैं, शाम की आरती में? बहुत कम। तो ये जो आरती हो रही है ये टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप लोग भी इसमें आके देखिए। हरे कृष्ण कीर्तन सब लोग के साथ, भक्तों के साथ करके देखिए, भगवान के आनंद के लिए नाचिए, और फिर देखिए आपका हृदय के अंदर से काम वासना कैसे छूमंतर हो जाती है। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि इसके अंदर शक्ति है। हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब कीजिए और ये कीर्तन में भाग लीजिए, तो रेगुलरली आरती में आइए, हर दिन शाम को आरती होती है। तो आपके आसपास में ही हॉस्टल्स हैं तो फायदा उठाइए इस मौके का। फिर ये पता नहीं आप कहीं बाद में जाएंगे कहाँ, इस्कॉन टेम्पल होगा नहीं होगा, ये कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी जब तक है मिस मत कीजिए, जितना ज़्यादा संभव हो, जब तक जितना समय निकाल सकें 15 मिनट 20 मिनट आइए और कीर्तन में खूब अच्छे से नाचिए, भाग लीजिए। ये व्यर्थ नहीं है, ये मानसिक कल्पना नहीं है सब, धीरे धीरे समझिए इसको। उसको समझने के लिए फिर ये पुस्तकें कि हम ये क्यों करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। ये भावुकता नहीं है, कोरी भावुकता नहीं है, ये इमोशनल बस, ये भक्त लोग ऐसे पागल हैं, लोग नाचते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस सबके पीछे बहुत तथ्य है, फिलॉसफी है। तो सब आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का, पढ़िए, समझिए क्या रीजन है उसके पीछे, क्या वैज्ञानिक तर्क है उसके पीछे, पढ़िए समझिए। और इस प्रकार से अपने जीवन को एक मतलब प्रदान कीजिए, मीनिंग, प्रोवाइड सम मीनिंग टू योर लाइफ। डोंट जस्ट लिव इन डार्कनेस, बस जीने के लिए जी रहे हैं, सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं, भेड़ चाल, ऐसे नहीं। जीवन का मकसद, एम को समझिए, कुछ हायर पर्पस के लिए काम कीजिए। जानवर भी जो करते हैं उसी को हम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब कीजिए, यही हमारी आपसे विनती है। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। Yes. Up to which degree?
The realities exist in this sentence, this here. As you are exposing more, you are more modern exposing. Is it really?
You are more considered a wise person, advanced person, modern person. Yeah, because modernization means sophisticated cats and dogs. That is the definition of modernization. So, for them, a person who is more like dog or cat, he will be more advanced. जो वर्ल्ड व्यू है, विचारधारा है, यदि आप पहले ये विचारधारा बना लिए हैं कि एडवांसमेंट की डेफिनेशन है जो जितना ज़्यादा इंद्रिय भोग करने के लिए एबल है, सक्षम है, वो उतने एडवांस है, तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कुत्ता बिल्ली जैसा है वो एडवांस माना जाएगा। इसलिए नेकेड डांस आज बहुत प्रचलित है। नेकेड डांस मीन्स जानवर तो हर रोज नेकेड डांस करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। नेकेड डांस, ओपन डांस, एवरीवेयर एवरीबडी इज डूइंग विदाउट पेइंग मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि मॉडर्नाइजेशन की वो डेफिनेशन है तो यस, वो अपेरेंट रियलिटी है आज की। हमने नहीं कहा कि जो शादी करते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है। हमने कहा यस, एक से ज्यादा शादी करने का मतलब नहीं है कि वो ज्यादा कामुक है। ये भी हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप सोचते हैं एक गर्लफ्रेंड 1% सेक्स डिजायर, दो गर्लफ्रेंड 2% सेक्स डिजायर। वो उनकी सोच नहीं है, क्योंकि उनके लिए विवाह करना केवल लाइक सेक्स लाइसेंस नहीं है। ये आजकल की सोच है कि मैरिज इज मीन फॉर सेक्स एंजॉयमेंट। यही मैंने बात कही। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह उसका वो केवल सेक्स एंजॉय करने के नहीं है। विवाह का पर्पज है योग्य संतान उत्पत्ति करना। तो जो क्षत्रिय हैं उनको अलाउड है एक से अधिक विवाह करना, राज्य को चलाने के लिए अच्छे क्षत्रिय उत्पन्न करना जो देश की रक्षा कर सके। और हम देखते हैं कि वो जो भले ही 100 शादी क्यों ना करें और उनके भले ही 1000 पुत्र क्यों ना उत्पन्न हो, पर वो पुत्र होते हैं, मूत्र नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है आजकल के विवाह में और उस समय के विवाह में। वो क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं, कुत्ते बिल्ली उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए वो आजकल के विवाह जैसा नहीं। आजकल का तो विवाह क्या है, मूत्र उत्पन्न करने के लिए विवाह है। वो पुत्र कहाँ है, कुत्ते बिल्ली जैसे हैं। तो उनसे महाजन उत्पन्न होते हैं, अर्जुन और उनकी परंपरा में आगे परीक्षित महाराज जैसे महाजन उत्पन्न होते हैं। तो राज्य के पालन के लिए संतान चाहिए, अच्छे क्षत्रिय चाहिए, इसलिए बहुविवाह ही करते हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं विवाह करते हैं फिर डाइवोर्स करते हैं, एक को किया फिर छोड़ दिया फिर दूसरे के संबंध, ऐसा नहीं करते हैं। सबका संरक्षण प्रदान करते हैं, सबको, चाहे 100 पत्नियां होंगी सबको संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं एक को ट्राई किया ओके ओल्ड सेकेंड। उनके पीछे ये तो काम वासना नहीं। और ये सिंपल एक सोशल फैक्ट है, हमेशा समाज के अंदर स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक होगी। और कुछ पुरुष विवाह नहीं करेंगे, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति में बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जो विवाह नहीं करते थे। और फिर शास्त्र का ये नियम है कि सभी स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य है, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है, कभी उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं तो वो एक्सप्लॉइट की जाएंगी, उनका शोषण होगा जो हो रहा है। तो तो स्त्रियां ज्यादा हैं पुरुषों से और सबका विवाह होना चाहिए, तो ये कैसे संभव होगा? जब कुछ पुरुष एक पत्नी से अधिक पत्नियां रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तब। तो यदि कोई व्यक्ति संभव सक्षम है एक पत्नी से अधिक को मेंटेन करने के लिए, तो वो कर सकता है। आजकल तो आप एक पत्नी को मेंटेन भी नहीं कर सकते हैं। पत्नी को बोलते हैं, पत्नी जी आप भी जॉब करो, आई कांट मेंटेन यू। तो कैसे तुम आदमी हो, तुम एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर सकते हो? तो पहले राजा ऐसे नहीं थे कि अपनी पत्नियों को बोलते जाके तुम भी जॉब करो। वो एक राजा, अगर उसकी 100 पत्नियां तो 100 की 100 को वो 100 महल बना सकता है, उनके लिए 100 को मेंटेन करेगा, जितने ही पुत्र हैं सबको मेंटेन करेगा। तो यदि कोई मेंटेन कर सकता है, संरक्षण दे सकता है, तो दे, जरूरी है समाज में ऐसा भी। नहीं तो कुछ स्त्रियां फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए रह जाएंगी, अविवाहित रह जाएंगी, उनका क्या होगा? फिर वो दूषित होंगी। तो वैदिक संस्कृति में बहुत गहराई में सब व्यवस्था है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हमको ये ऊपर ऊपर से बना दिया है, अरे वो अर्जुन ने भी थी शादी के, अर्जुन की कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आप? लेकिन हम वर्तमान में अर्जुन जैसा कोई नहीं है, यदि हैं तो ठीक, कोई नहीं, कौन है? एक पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकते। यस, शरीर इतना दुर्बल क्यों है? तो क्या मोटा होना हष्ट पुष्ट और अच्छा होने की परिभाषा है क्या? तो ये मोटापा लहू से होता है क्या? मोटापा चर्बी से होता है, लहू से मोटापा नहीं होता। और लहू जितना चाहिए उतना होना चाहिए, ऐसा होना कि ड्रम बज जाएगा अंदर लहू का कि वो बाहर निकलेगा मुझसे। तो जितना जिसके कार्य के लिए जितना आवश्यक है उतना लहू होना चाहिए, उतना मेरे अंदर है। तो मेरा कार्य ऐसे है, मेरा कार्य है, मुझे सेक्स के पीछे पागल नहीं हूँ, इसलिए मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा मेंटेन करना है, बड़ा घर मेंटेन करना है, बहुत करना है, उसके लिए बहुत भागना है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा अपना शरीर ऐसे ही मेंटेन हुआ है। और कोई प्रश्न? क्या 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 हम सब सब स्वप्न दोष का क्या? हाँ हाँ, यस यस। तो स्वप्न दोष के विषय में प्रश्न है। तो दुर्भाग्य से जो लोग अनेक बार वीर्य स्खलन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए चाहते हुए भी वीर्य स्खलन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके लिए बड़ी समस्या रहती है स्वप्न दोष, भले ही वो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष होता है। तो इसके लिए कई सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, जो इसको कम कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, स्त्रियों का विचार मत कीजिए, तो धीरे धीरे कम होगा। अनेक ऐसी शारीरिक फैक्ट्स भी हैं जो वीर्य स्वप्न दोष को बढ़ाते हैं, उनकी जानकारी भी रखिए, वो सब हमारी एक पुस्तक है ब्रह्मचर्य में, उसमें दिया है। तो विशेष एक पॉइंट है कि जब शरीर की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है तो वो ऊर्जा वीर्य स्खलन के रूप में बाहर आती है। तो बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक खाना, तीखा खाना विशेष रूप से, बहुत अधिक मिठाइयां खाना, ये सब वीर्य स्खलन को बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्त्रियों के साथ वो मन के अंदर विचार, मन के अंदर विचार होगा तो सब दोष होगा ही, उसको तो रोकना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय हैं अन्य जो आपको हेल्प करेंगे। अंततः स्वप्न दोष क्यों होता है कि आप दिन में तो बुद्धि से मन को वश में कर लिए, लेकिन रात में आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो अनगिनत जीवनों से ये मैथुन सुख की इच्छाएं भरी हुई हैं, वो पटल पर आती रहती हैं और उसकी वजह से स्वप्न दोष होता है। तो अंततः उसकी रेमेडी है कि आप यदि भक्ति सेवा से अपनी चेतना को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेंगे, सब कॉन्शियस कॉन्शियस एवरीथिंग पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेंगे, तब फिर वहां पर इस वीरस्खलन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको भक्ति योग अनुभव का अनुशीलन करना शुरू करना होगा, और जैसे जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान की सेवा करते हुए अपने चित्त को शुद्ध बनाएंगे, वैसे वैसे ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और कोई प्रश्न किसे? नहीं, अनफॉर्चुनेट माना जाएगा, दुर्भाग्यशाली, लेकिन उससे शरीर का तो हनन हो ही रहा है। और कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर प्रसाद वितरण। कृपया आप सब लोग खड़े होइए, हम लोग हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, जो औषधि है सर्व अनाउंसमेंट क्या। हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है 7:30 पे, तो कई विद्यार्थी 9 बजे आते हैं, प्रसाद लेंगे उसमें भी शुद्धि होगा, नो डाउट, लेकिन साथ साथ यदि आप श्रवण भी करेंगे तो वास्तव में विशेष शुद्धि होगा। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर आइए, थोड़ा सा एक सप्ताह में एक समय है उसको थोड़ा निकालिए। हरे कृष्ण।